ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पांचवें, छठे और सातवें चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। एनडीए और एनडी गठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए राज्य के 8 संसदीय क्षेत्रों में 79 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द किए गए। 138 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र पाया गया वैध। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत राज्य के 5 संसदीय क्षेत्रों में 13 मई को संपन्न मतदान का संशोधित आंकड़ा जारी। 58.21% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद आज पहली बार 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा गया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पांचवें, छठे और सातवें चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। विभिन्न गठबंधन और राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए लगातार सभाएं, रैली, रोड शो और जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से अल्पसंख्यकों को वोट बैंक मानती है। श्री मोदी आज महाराष्ट्र के टिंडोरी में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती थी कि देश के बजट का 15% हिस्सा सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो, लेकिन भाजपा के विरोध के कारण पार्टी अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाई।
कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। मुझे याद है उस समय मैं सीएम था और जब ये बात कांग्रेस ने उठाई थी तो मैंने उसका मुख्यमंत्री रहते हुए पूर्ण जोर विरोध किया था। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार में एनडीए पिछले लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को दोहराएगा। एक समाचार एजेंसी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि यह चुनाव नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है।
ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है और हमारे गठबंधन की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। हम निश्चित रूप से बिहार में हमारा गत चुनाव का जो परफॉर्मेंस था उसको रिपीट करेंगे।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज शिवहर संसदीय क्षेत्र के सिरोना में जदयू उम्मीदवार लवली आनंद के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री नड्डा ने राजद और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरजेडी का मतलब है रिश्वतखोरी, जंगलराज और दलदल।
आरजेडी का नाम है रिश्वतखोरी, जंगलराज, दलदल। आर फॉर रिश्वतखोरी, ज फॉर जंगलराज, और ये दल नहीं है, दलदल है, दलदल दलदल। और ये कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये भ्रष्टाचारी पार्टी है।
श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने जमीन से लेकर समुद्र, अंतरिक्ष और पाताल तक भ्रष्टाचार किए हैं।
और ये कांग्रेस पार्टी ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार। कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? और समुद्र का पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था?
भाजपा अध्यक्ष ने एनडीए गठबंधन पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से विकास के लिए एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील की। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण युवाओं में निराशा का माहौल है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ युवाओं की उम्र सीमा बीत चुकी है और वे बेरोजगार हैं।
प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो है ओवर एज हो गए, यानी जो युवा ओवर एज हुए हैं वो बेरोजगार हो, बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। यानी 25 करोड़ जो ओवर एज हुए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, और 25 करोड़ जो संख्या है वो मामूली संख्या नहीं है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के हरसिद्धि में एनडीए उम्मीदवार राधामोहन सिंह के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पासवान ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव चुनावी लाभ लेने के लिए अपने भाषणों में नीतीश कुमार के नाम की चर्चा कर रहे हैं।
मतलब उनको इस बात का एहसास है ना कि बिना हमारे मुख्यमंत्री के ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए अगर तेजस्वी जी को करना पड़ रहा है तो ये दर्शाता है कि कितने असमर्थ हैं, कितने कमजोर हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी के बिना। आज जब वो उनके साथ गठबंधन में नहीं भी है तब भी उनके नाम का इस्तेमाल करके भ्रम फैलाकर ये अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं।
इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को कहीं भी जन समर्थन नहीं मिल रहा है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा को बिहार सहित पूरे देश में अपार समर्थन मिल रहा है।
देखिए तेजस्वी यादव डरे हुए हैं, उनके साथ कोई वोट नहीं है। इधर हमारे साथ हमारे नेता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी हैं, सब बीजेपी के साथ।
लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए राज्य के 8 संसदीय क्षेत्रों में आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। जांच के बाद कुल 79 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। इन क्षेत्रों से 217 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा भरा था जिसमें 138 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नालंदा संसदीय क्षेत्र से 29, पटना साहिब से 17, पाटलिपुत्र से 22, आरा से 14, बक्सर से 15, सासाराम से 10, काराकाट से 14 और जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से 17 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। इधर अगियों विधानसभा क्षेत्र के लिए हो रहे उपचुनाव में सभी 9 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। उम्मीदवार 17 मई तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस चरण के तहत 1 जून को मतदान होना है। जदयू की पूर्व विधायक पूनम देवी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। पटना में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने उन्हें सदस्यता दिलाई। पूनम देवी वर्ष 2005 से वर्ष 2020 तक खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से जदयू से विधायक रह चुकी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत राज्य के 5 संसदीय क्षेत्रों दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में 13 मई को संपन्न मतदान का संशोधित आंकड़ा जारी किया है। इन क्षेत्रों में 58.21% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे अधिक समस्तीपुर में 60.11% मतदान हुआ है। वहीं उजियारपुर में 59.59, बेगूसराय में 58.7, दरभंगा में 57.37 और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में 55.55% मतदान हुआ। यह आंकड़ा वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 1% कम है। और अब सुनते हैं राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के राजनीतिक परिदृश्य पर आधारित आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला। आज बात पटना साहिब लोकसभा सीट की। पटना साहिब बिहार के उन 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जहां सातवें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
मोक्षदायिनी गंगा के दक्षिणी किनारे अवस्थित पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र बिहार की राजधानी पटना के मुख्य शहरी भाग से जुड़ा है। गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब का समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास रहा है। वर्ष 2008 में अस्तित्व में आए इस सीट का चुनावी सफर भी बहुत दिलचस्प है। अब तक हुए चुनावों में इस सीट पर भाजपा उम्मीदवारों को ही जीत मिलती रही है। वर्ष 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में पटना साहिब सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। 2019 के चुनाव में भाजपा ने निवर्तमान सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की जगह रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा। इससे नाराज होकर शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो गए। चुनाव परिणामों में श्री सिन्हा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी भाजपा ने रविशंकर प्रसाद को एक बार फिर मैदान में उतारा है। उनके सामने है कांग्रेस के अंशुल अभिजीत कांग्रेस की दिग्गज नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे हैं और पहली बार चुनावी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। विधानसभावार शक्ति संतुलन देखे तो 6 में से 4 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर राजद का कब्जा है। दीघा, बांकीपुर, कुमरार और पटना साहिब विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। वहीं बख्तियारपुर और फतुहा राजद के कब्जे में है। चुनाव में मुद्दों की बात करें तो क्षेत्र का समुचित विकास और रोजगार आज भी लोगों की प्रमुख मांग है। इसके अलावा प्रदूषण, जाम और जल जमाव की समस्या प्रमुख मुद्दे हैं। लेकिन चुनाव में स्थानीय मुद्दों की तुलना में राष्ट्रीय मुद्दे अधिक प्रभावी दिख रहे हैं। एक ओर जहां भाजपा उम्मीदवार मोदी सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियां और क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के सहारे मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्षेत्र के 21 लाख से अधिक मतदाता लगातार दूसरी बार भाजपा के रविशंकर प्रसाद पर विश्वास जताते हैं या फिर कांग्रेस के अंशुल अभिजीत को लोकसभा भेजते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद आज पहली बार 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा गया। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में आवेदकों को प्रमाण पत्र सौंपे और उन्हें बधाई दी। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का प्रकोप एक बार फिर बढ़ गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। 41.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है।
वर्षा की गतिविधियां कम हो गई है। बिहार में अगले 4 दिनों तक मौसम शुष्क और तापमान में क्रमिक वृद्धि का पूर्वानुमान है। उत्तर पश्चिम दिशा से सूखी हवाएं चलेगी, वातावरण के नमी में कमी आएगी।
पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सरैया गांव में गंडक नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। वहीं मधुबनी जिले के खोगरडीहा थाना क्षेत्र के नौवा पाखर पंचायत में बिहुल नदी में डूबने से 1 युवक की मौत हो गई। वहीं मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के भेलवा गंगा घाट पर स्नान करने के दौरान डूबने से 1 बच्ची की मौत हो गई। अररिया जिले के कुर्साकांटा थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर 13 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शिवहर जिला पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से हथियार के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र के हरहर महादेव चौक के पास पुलिस ने एक कार से 50 कार्टन शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 5वें, 6ठे और 7वें चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए राज्य के 8 संसदीय क्षेत्रों में 79 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द किए गए। 138 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र पाया गया वैध। लोकसभा चुनाव के 4थे चरण के तहत राज्य के 5 संसदीय क्षेत्रों में 13 मई को संपन्न मतदान का संशोधित आंकड़ा जारी। 58.21% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद आज पहली बार 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।